उसके बाद हमारे पास एक ऐसा पेशेंट होता है कि जो कि मॉडरेट SLA एक्टिविटी की कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा। हाउ डू वी नो कि जब हम पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन कर लेंगे और उसके बाद हमने सबसे पहले तो अपनी हिस्ट्री पे हमने पेशेंट को लेबल करना है एज अ केस ऑफ SLE, और अपने डिफरेंशियल्स में वी आर गोइंग टू कीप MCDD और अदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। लेकिन हमने SLE को प्रोविजनल डायग्नोसिस में इसलिए कहा क्योंकि उसमें हमारे पास SLE का क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है, एटलीस्ट फोर, जो हमारे पास 11 क्राइटेरिया सेलेक्ट क्राइटेरिया, उसमें से एटलीस्ट फोर अगर सेटिस्फाई होते हैं देन वी आर गोइंग टू कीप अ प्रोविजनल डायग्नोसिस एज सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसस। पेशेंट को SLE लेबल करने के बाद आप अपनी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में ही स्कोरिंग अपने माइंड में करके आप उसको कैटेगराइज कर रहे हैं एज अ मॉडरेट डिजीज एक्टिविटी। सो जब आपका ट्रीटमेंट प्लान, जब एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट प्लान, सो इन्वेस्टिगेशंस के बाद ऑब्वियसली अपनी ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करेंगे बताना। तो जो आप पहला स्टेटमेंट कहेंगे एग्ज़ाम में, वहीं पे आपकी इमेज बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑल्दो वो तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं आपकी हिस्ट्री टिकिंग के दौरान ही कि आपको आइडिया है कि आप उन सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं पेशेंट से, टू कैटेगराइज द पेशेंट इन टू द सिवेरिटी कैटेगरी। तो उसमें आपको पता चल गया कि पेशेंट मॉडरेट SLE एक्टिविटी में फॉल कर रहा है, और आपने ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे। द पेशेंट द एग्जामिनर में क्वेश्चन यूँ कि आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि सर क्योंकि ये पेशेंट हमारे पास मॉडरेट SLE एक्टिविटी में फॉल कर रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास लीडाई स्कोर है इट इज़ 6 to 12 या BELAG-B स्कोर में फॉल कर रहा है। देयर इज सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, जितनी भी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होगी आप बता देंगे। उसके अलावा जो है वो प्लेटलेट काउंट, तो ऑब्वियसली एग्जाम में आपको पता नहीं होता, लेकिन वैसे अगर आपने कोई पेशेंट देखा हो जिसका आपके पास सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं और उसका जो प्लेटलेट काउंट है वो फॉल करता है 25,000 to 49,000, राइट। ऑन द क्यूटेनियस एग्जामिनेशन देयर इज़ द स्पेसिफिक क्यूटेनियस फाइंडिंग्स इज इन्वॉल्विंग टू और मोर देन टू ऑफ द 9 बॉडीज ऑफ इज एरिया, या अप टू टू, सॉरी, इन मॉडरेट इट इज़ इन्वॉल्विंग अप टू टू ऑफ द 9 बॉडीज ऑफ इज एरियाज। और इसमें जो है वो आपके पास, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पता चला ये मॉडरेट SLE एक्टिविटी में फॉल करें। अब हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्लान है इसको हम दो में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट देयर इज़ कंट्रोल ऑफ द डिजीज़ एंड द सेकेंड इज़ द मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। सो इसमें हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में वी आर गोइंग टू गिव प्रेडनिसोलॉन इन अ डोज ऑफ लेस देन 0.5 mg/kg/day। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि एग्जाम्स में अगर आप एग्जामिनर को ये बता देते हैं कि वी आर गोइंग टू गिव द डोज स्टीरॉयड 0.5 mg, तो वो उस पर जो है ना बहुत उनको गुस्सा आता है और वो ना मतलब दे डोंट लाइक इट। सो दे वॉन्ट टू लिसन 1 to 2 mg/kg/day। तो आपने ये जो है वो मॉडरेट में आप याद रखें कि आपने डोज़ क्या बतानी होती है, 0.5 to 1 बता दें, 1 to 2 भी नहीं, वो सिवेयर के लिए कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे ये मेंशन है कि प्रेडनिसोलॉन को हम देते हैं डोज़ ऑफ 0.5 mg/kg/day, और इफ़ वी आर रिक्वायर्ड टू गिव IV स्टीरॉयड पल्स देन वी आर गोइंग टू गिव IV मिथाइल प्रेडनिसोलॉन लेस देन 250 mg फॉर 3 days। अलॉन्ग विथ दिस वी आर गोइंग टू इंक्लूड अदर इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, एसिथाइप्रिन, माइकोफिनोलेट, मोफिटल, मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड। अब इनमें जो भी हम अपनी सेकेंड लाइन इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग चूज़ करेंगे उसको भी हम अपने पेशेंट को माइंड में रखते हुए चूज़ करेंगे। करंटली ये देखा जाता है कि MMF को और जितनी भी इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट है उनको प्रेफर करते हैं कि MMF यूज़ करें, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है इट इज़ सुपीरियर टू एज़ाथायोप्रीन, और स्पेशली अगर पेशेंट जो है वो रीनल इन्वॉल्वमेंट के साथ है तो उसमें MMF का बहुत अच्छा रोल है। तो MMF को आपने सबसे पहले बोलना है, उसके बाद एज़ाथायोप्रीन, मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन एंड सो ऑन। साइक्लोस्पोरिन के तो वैसे ही आप बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे यूज़ नहीं करते, इसके जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है उसकी वजह से हम इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं दे सकते। बट स्टिल यू यू शुड नो कि अगर हम देना हमें ज़रूरत पड़े तो फिर हम कितनी डोज में देते हैं। और इसके अलावा एडिशनली ये कि साइक्लोस्पोरिन इज़ एक्सपेंसिव, तो हर पेशेंट नहीं दे सकते। डोसेस में एज़ाथियोप्रिन की जो डोज है वो 1.5 to 2 mg पर kg पर डे, और मीथोट्रेक्सेट 20 to 25 mg पर वीक, MMF 2 to 3 grams पर डे, जिसको हम 500 से स्टार्ट करते हैं और स्लोली स्लोली इसको टाइट्रेट करके हम 2 to 3 grams पर डे मैक्सिमम तक दे सकते हैं, और साइक्लोस्पोरिन को लेस देन 2 mg पर kg पर डे में हम देंगे। और एच सी क्यू ऑब्वियसली एज अ फर्स्ट लाइन हमने इसको ज़रूर इंक्लूड करना है विद स्टीरॉयड, और इसको आगे हमने लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है इन अ डोज ऑफ लेस देन 6.5 mg पर kg पर डे। दीज आर द डोजेज जो आर यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ द डिजीज़, एंड ऑब्वियसली फॉर द मेंटेनेंस वी आर गोइंग टू गिव द लीस्ट पॉसिबल डोज, जिसमें प्रेडनिसोलोन लेस देन 7.5 mg पर डे, एज़ाथियोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन की डोज याद रखने के लिए आप ये कर लें कि दोनों का कि जो डोज है ना वो सेम है, 50 to 100 mg पर डे, मीथोट्रेक्सेट 10 mg पर वीक, और MMF 1 grams पर डे की मेंटेनेंस डोज पर हम रखते हैं, और HCQ को 200 mg पर डे की मेंटेनेंस डोज पर देते हैं। रिफ्रैक्ट्री केसेस वो होते हैं जिसमें आपने मैक्सिमम डोसेस दे के देख लिया है, आपके पास जो है वो मैक्सिमम पीरियड भी आपने ऑब्जर्व कर लिया, द डिजीज इज़ नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, देन वी आर गोइंग टू गिव द बायोलॉजिक्स दैट इज़ बेलिमुमैब और रिटुक्सिमैब, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन से पेशेंट में हमने बेलिमुमैब देना है और किस में रिटुक्सिमैब देना है।